भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय तीसरा। इस अध्याय का शीर्षक है श्री वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं। श्लोक क्रमांक 14। कियान भुवोयम् क्षपितोरु भारो यत् द्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूलै अष्टादशा अक्षहिणीको मदंशै आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनां। कियान् भुवोयम् क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलै अष्टादशाक्षौ हिणिको मदंशै आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनां। कियान् भुवोयम् क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलै अष्टादशाक्षौ हिणिको मदंशैर् आस्ते बलं दुर्विशहं यदूना। कियान् भुवोयम् क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलै अष्टादशाक्षौ हिणिको मदंशैर् आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनां। क्या है भुव धरती का अयम यह क्षपित कम किया उरु बहुत अधिक भार भार यत जो द्रोण द्रोण भीष्म भीष्म अर्जुन अर्जुन भीम भीम मूलय पुष्टभूमि में अष्टादश अठारह अक्षोहिणक अक्षोहिणी सेना कह कौन मदंशई मेरे पारिवारिक जनों के साथ आस्ते अब तक बलम महान शक्ति दुर्विषहम असहय यदु नाम यदुवंश की अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रोण भीष्म अर्जुन और भीम की सहायता से पृथ्वी का विशाल भार हल्का हो गया है, किंतु यह क्या है? मुझसे उत्पन्न यदुवंश की महान शक्ति अब भी विद्यमान है, जो पृथ्वी के लिए अधिक असह्य भार बन सकती है। तात्पर्य, यह सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण पृथ्वी अत्यधिक भाराक्रांत हो जाती है, इसलिए युद्ध तथा उसी प्रकार की अन्य विनाशकारी प्रक्रियाएं होती हैं। धरती कभी भी अत्यधिक भाराक्रांत नहीं हो सकती। धरती पर स्थित विशालतम पर्वतों और समुद्रों में मानव की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में जीव रहते हैं, फिर भी वे भार नहीं होते। यदि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों की गणना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्यों की संख्या प्राणियों की समग्र संख्या की 5% भी नहीं है। यदि मानवों के जन्म की गति बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य प्राणियों के जन्म की गति भी बढ़ती जा रही है। निम्नतर जीवों पशु जलचर नभचर इत्यादि के जन्म की गति मानव की अपेक्षा बहुत अधिक है। भगवान के आदेश अनुसार धरती पर सब जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, और यदि प्राणियों की वृद्धि यथार्थ औसत से अधिक हो जाती है तो वे उनके लिए अधिकादित की व्यवस्था कर सकते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि से पृथ्वी का बोझ बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। धर्मग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा के पालन द्वारा ही धरती भाराक्रांत होती है। भगवान दुष्टों के दलन के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए नहीं। जैसा लौकिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा भ्रांतिवश कहा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, भगवान की इच्छा का उल्लंघन करने वाले दुष्टों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। भौतिक सृष्टि का विधान भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है। भगवान की इच्छा है कि जो बद्ध जीव उनके राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं है, उन्हें उस दिव्य राज्य में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अपनी दशा सुधारने का अवसर मिले। भौतिक प्रपंच को संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य है बद्ध जीवों को भगवान के राज्य में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना। भगवान की प्रकृति ने सब जीवों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, इसलिए पृथ्वी के धरातल पर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो जाने पर भी यदि जन समाज भगवत भावनामृत के ठीक अनुकूल हैं और दुष्ट नहीं बन गया है, तो ऐसा भार पृथ्वी के लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। दो प्रकार के भार होते हैं, पशु का भार तथा प्रेम का भार। पशु का भार असह्य होता है, लेकिन प्रेम का भार आनंद का स्रोत होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम के भार का बड़ा व्यावहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि तरुणी पत्नी को पति का भार, माता की गोद में पुत्र का भार, व्यापारी के लिए धन का भार, भारीपन की दृष्टि से वस्तुतः भार है, फिर भी वह उनके लिए आनंद का एक स्रोत है। और ऐसी भारी वस्तुओं की अनुपस्थिति में किसी को भी वियोग के भार का अनुभव हो सकता है। वस्तुओं की अनुपस्थिति में वियोग का भार भार के अपेक्षा अधिक भार वाला होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार का उल्लेख किया, तो भगवान का संकेत पशु के भार से नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के समुत्पन्न उनके परिवार के सदस्यों की संख्या लाखों तक पहुंच गई थी और निश्चय ही यह धरती पर जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि थी, किंतु वे सब भगवान के अप्राकृत अंश के प्रकाश थे, इसलिए धरती के लिए परमानंद के कारण थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती के भार के प्रसंग में उनकी ओर संकेत किया, तो उनके मन में निकट भविष्य में होने वाला यदुवंशियों का तिरोधान था। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सभी सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और भगवान के साथ साथ उनको भी अंतर्धान हो जाना था। जब भगवान ने यदुवंश के प्रसंग में धरती के असह्य भार का उल्लेख किया, तो वे उनके वियोग के भार की ओर संकेत कर रहे थे। शिल जीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। हरे कृष्णा। इस तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर इनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला और वृंदावन के बाहर की लीला, इन दोनों का अनुभव किया। हालांकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्धव जी वृंदावन में कब थे जब भगवान अपनी लीला कर रहे थे। हाँ, उद्धव जी वृंदावन में उस समय नहीं थे, परंतु जब भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, तब उन्होंने वृंदावन की महिमा क्या है इसकी जांच पड़ताल की। और भगवान का उद्देश्य यही था कि उद्धव जी भगवान वृंदावन की महिमा यदि जांच लेंगे और जान लेंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे, तो वो वृंदावन का प्रचार कर पाएंगे, वृंदावन की महिमा का प्रचार कर पाएंगे। तो उद्धव जी जब वृंदावन गए, तो उन्होंने नंद यशोदा और विशेष रूप से गोपियों से जब भेंट की, तो उन्हें समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक भक्त कौन है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के तो अनगिनत भक्त हैं, परंतु उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रजवासीगण, और ब्रजवासियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रज वधुएं गोपियां। तब यहां पर विदुर जी को जब उद्धव जी सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वो विभाजित करते हुए सुना रहे हैं। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है श्री वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं। अब देखिए, इस्कॉन में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जब हम कभी सुनते थे, तो कभी ऐसा नहीं सुनते थे कि भगवान की वृंदावन लीला अलग है, द्वारका की लीला अलग है। हमें तो पता भी नहीं था कि भगवान ने लीलाएं वृंदावन में की। जैसे हमारे एक बंबई के भक्त, वो गोविंदा रेस्टोरेंट के जो कुक्स उनको एक बार प्रश्न पूछ रहे थे कि वृंदावन कहाँ है। तो अब ये हालांकि भक्त परंतु नए नए भक्ति में आए थे, केवल 16 माला सभी लोग करते थे और अभी भी करते हैं, परंतु शास्त्र का ज्ञान कुछ इतना नहीं था, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था। तो उनको जब पूछा गया तो एक व्यक्ति ने कहा कि बैंगलोर में, कर्नाटका में, क्योंकि वो वहां का था, तो उसे लगा वृंदावन गार्डन के बारे में पूछ रहे हैं, जो फेमस बैंगलोर का वृंदावन गार्डन है। तो हमारा ज्ञान कितना था वृंदावन के बारे में, क्या जानते थे हम वृंदावन के बारे में? आज भी आप नासिक में जाके किसी को पूछो कि वृंदावन कहाँ है, तो बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि वृंदावन वो मथुरा के पास है, और मथुरा जानते होंगे, परंतु मथुरा किस लिए? मथुरा के पेड़े। मथुरा प्रसिद्ध है मथुरा के पेड़ों के लिए, भगवान के जन्म स्थान के लिए इतना नहीं। और हां, आजकल तो फिर भी जानते होंगे कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। क्यों? राजनीति कारण के वजह से। जैसे अयोध्या को लोग जानने लगे, क्यों? बाबरी मस्जिद के बाद। नहीं तो कोई इतना विशेष जानता नहीं था अयोध्या है कहां और क्या इतना उसका महत्व है। परंतु श्रीमद् भागवत में देखिए, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब श्रीमद् भागवत से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो कितना विस्तार से श्रीमद् भागवत वो हमें सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कहां कहां कैसे हुई और उनकी महिमा, हर एक स्थान में भगवान ने जो लीला की उसकी महिमा क्या थी। एक सनातन गोस्वामी द्वारा रचित सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान के वृंदावन लीला जो शीर्षक है इस अध्याय का, और भगवान के वृंदावन के बाहर की लीला, इसके विषय में सनातन गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, कृष्णेन न व्रज जन किल मोहितास्ते तैसह व्यमोहि भगवान इति सत्यमेव गत्वा मयैव सहि विस्मृत देव कार्यो न स्मारिति किमिति कृत्य न हो कथंचित। वो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए, तो भगवान तुरंत मथुरा से गोकुल चले गए या ले जाए गए, वसुदेव जी ले गए, और फिर उनकी लीलाएं वहां पर प्रारंभ हुई। और जीव गोस्वामी इनके अनुसार तो भगवान वहीं पर पैदा हुए, श्याम सुंदर कृष्ण वो गोकुल वृंदावन में ही पैदा हुए। तो भगवान जब अवतीर्ण हुए गोकुल में, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाने की कोशिश की वृंदावन में। उन्होंने प्रयास किया कि ब्रजवासियों को मैं थोड़ा अपना ऐश्वर्य दिखाऊं, ताकि ब्रजवासी मेरे ऐश्वर्य को देखकर मोहित हो जाएं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हालांकि भगवान ने प्रयास किया अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए, परंतु ब्रजवासी तनिक भी मोहित नहीं हुए भगवान के ऐश्वर्य को देखकर। अब 6 दिन के भगवान पुतना का वध करते हैं, जो कि इतनी विकराल स्वरूपिणी ये पुतना राक्षसी, 6 दिन के भगवान पुतना का वध करते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई क्या देखेगा, भगवान का ऐश्वर्य, तृणावर्त, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, इतने सारे असुरों का वध भगवान, ऐसा नहीं कि अकेले में कहीं किए, इन सब के सामने किया, गोवर्धन धारण किया, पूरे वृंदावन के सामने गोवर्धन को धारण किया, भगवान केवल 7 वर्ष के थे। तो इतना ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया अपनी क्रिया शक्ति का। भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, उसमें से जो क्रिया शक्ति है जिसके द्वारा भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाए, तो कहा गया है कृष्णेन न व्रजजन किल मोहितास्ते, कि ये ब्रजजन बिल्कुल मोहित नहीं हुए भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों को देखकर, बल्कि गत्वा मयैव व्यमोहित, बल्कि हुआ क्या कि ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण मोहित हो गए। अब उनका प्रयोजन था ब्रजवासियों को मोहित करना, परंतु जब ब्रजवासियों का प्रेम उन्होंने देखा, जैसे हम अक्सर इस उदाहरण की चर्चा किए हैं, रूप गोस्वामी ने सुंदर उदाहरण दिया है कि ब्रजवासियों का प्रेम है जैसे कि गाढ़ा घी, और वृंदावन के बाहर के जो वासी हैं भगवान के भक्त, द्वारका, मथुरा इत्यादि, उनका प्रेम है पिघला हुआ घी, और भगवान का ऐश्वर्य है मानो वो हीरा। तो गाढ़ा घी यदि हीरे के ऊपर आता है तो वो हीरा दिखाई नहीं देता, वो हीरे की चमक दिखाई नहीं देती। तो भगवान ने ऐश्वर्य वृंदावन में भी दिखाया और भगवान ने ऐश्वर्य वृंदावन के बाहर भी दिखाया, दोनों में अंतर क्या, ऐश्वर्य वही, अंतर द्वारका मथुरा वासियों में और ब्रजवासियों में, उनके प्रेम में अंतर। यहां पर गाढ़ा घी और वहां पिघला हुआ घी। तो सनातन गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान इतने मोहित हो गए। अब देखिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जब कोई बद्ध जीव मोहित हो जाता है तो उसकी दशा क्या होती है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधोद्भिजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इन 2 श्लोकों में भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब व्यक्ति मोहित हो जाता है विषय वस्तु को देखकर, तो इस मोहित अवस्था में, सम्मोहित अवस्था में स्मृति विभ्रम होता है, कि उसकी जो स्मरण शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। मोहित अवस्था में व्यक्ति, बद्ध जीव, वो इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता कि क्या सही क्या गलत। जैसे कि जब कोई बहुत नशा कर लेता है तो उसे समझ में नहीं आता कि दिन है या रात है, कितने लोग सामने हैं, एक उंगली है या 5 उंगली है, 10 उंगली है, क्या वो बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो स्मृति वो थोड़ा टी है, मोहित अवस्था में व्यक्ति की स्मृति, द मेमोरी इज लॉस्ट। और स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे मस्तिष्क के अंदर स्मृति ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति के कारण हम बहुत से कार्य करते हैं, क्योंकि ये स्मरण शक्ति हमें याद दिलाती है कि कैसे बोलना है। अभी ये जो मैं बोल पा रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि ये शब्द मेरे मेमोरी में है। आप लोग समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि आपकी स्मरण शक्ति में ये सारे शब्द मैं जो बोल रहा हूं, कल्पना कीजिए कि पूरा मस्तिष्क का हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, मेमोरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, और मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपको पता ही नहीं कि कृष्ण इसका अर्थ क्या है, मेमोरी से चला गया। होता है ना कई बार लोग याददाश्त चली जाती है उनकी और भूल जाते हैं कि वो कौन कहां थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साधारण रूप से यदि कार्य किसी को करना है तो कितनी स्मरण शक्ति उसे चाहिए। तो यहां पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अचानक सनातन गोस्वामी के वृंदावन के श्लोक से हम भगवद गीता तक कहां पहुंच गए? क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इतना मोहित हो गए, ब्रजवासियों के प्रेम के कारण इतना भगवान मोहित हो गए कि विस्मृत, मेमोरी चली गई भगवान की। सोचिए, भगवान की भी मेमोरी जा सकती है। सनातन गोस्वामी कहते हैं विस्मृत देव कार्य। कैसी विस्मृति हुई भगवान को? देव कार्य की विस्मृति हुई। अब भगवान का देव कार्य क्या है? भगवान का देव कार्य है जो भगवान गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये भगवान का देव कार्य है कि दुष्ट जो हैं, राक्षस जो हैं, उनका हनन करना और जो साधु हैं उनकी रक्षा करना, ये भगवान का देव कार्य। तो अब देखिए यहां पर भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान इस भौतिक संसार में अवतीर्ण होते हैं अपने देव कार्य को सिद्ध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए। ये सब देव कार्य है भगवान। तो अब भगवान ने इन सब राक्षसों का जो वध किया, इतने सारे राक्षसों का, तो ये वध किसने किया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परिभाषा एक है परम भोक्ता, जो केवल भोग विलास में लगे रहते हैं। गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर कृष्ण वो किसी राक्षस का वध नहीं करते, क्योंकि वहां राक्षस है ही नहीं। तो इस भौम वृंदावन में भी भगवान अपना गोलोक वृंदावन धाम को लेकर आते हैं, तब फिर भगवान को भी कोई कार्य करना पड़ता है क्या? हम तो ये सुने थे कि भगवान तो केवल अपनी बांसुरी बजाते हैं और रासलीला करते हैं। तो ये इन सब असुरों का वध कर धर्म की स्थापना करना, ये तो सब देव कार्य हो गया। इज गॉड ऑल्सो ड्यूटी बाउंड? ये प्रश्न है। तो जी गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब उनको किसी असुर का वध करना होता है तो श्याम सुंदर कृष्ण नहीं करते, वसुदेव कृष्ण। वो वसुदेव कृष्ण जो हैं वो किसी असुर का वध करते हैं। इसलिए श्याम सुंदर कृष्ण वो हर समय अपने प्रेम धाम में स्थित रहते हैं। तो अब एक है भगवान का प्रेम धाम और एक है ये भौतिक धाम। तो भौतिक संसार जिसमें हम लोग सब अपनी तथाकथित लीला कर रहे हैं, ये भौतिक संसार ये संचालित है नियमों के द्वारा, लॉज। देर आर लॉज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। और आध्यात्मिक संसार जो है वो संचालित है प्रेम। Spiritual world is governed by love. Material world is governed by laws. तो यहां पर हम प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक संसार को प्रस्थापित करने का, परंतु आध्यात्मिक संसार यहां पर प्रस्थापित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस भौतिक संसार का नियम है कि व्यक्ति को कानून के अधीन जीना है, लॉज। अब देखिए, हमारे शरीर को लें, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमें मिलता है प्रेम के द्वारा या कानून के द्वारा? कानून के द्वारा। कौन सा कानून? कर्मों का कानून, कर्मों का नियम। हम कहां पैदा होंगे, कौन से परिवार में, उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होगी, उस परिवार की शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, जो भी कुछ, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पिछले कर्मों के द्वारा वो निर्धारित रहता है। सो अवर बॉडी टेकिंग बर्थ इन अ सर्टन फैमिली इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कर्मा। हमारा मन क्या सोच विचार करता है वो भी एक नियम के अधीन है। शरीर एक नियम के अधीन है, मन एक नियम के अधीन, और फिर इन शरीरों से जब हम कोई रिश्ता स्थापित करते हैं अन्य शरीरों के साथ, वो भी नियमों के अधीन है। जैसे कि इस भौतिक संसार में यदि आपको किसी के साथ संबंध स्थापित करना है, तो वो संबंध स्थापित आपको इस भौतिक संसार के कानून के अधीन करना होगा। जैसे कि जब कोई किसी से विवाह करता है तो कानून के अधीन वो विवाह होना चाहिए, इसलिए तो वो मैरिज सर्टिफिकेट। यहां तक कि उससे पहले जब पैदा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट कानून देता है कि ये इस दिन, इस समय, इस जगह पर पैदा हुआ। तो हमारा आइडेंटिटी पैदा होने का किस पर निर्धारित है? उस सर्टिफिकेट पर। हालांकि आजकल तो अपने अनुसार लोग कर लेते हैं कब पैदा होना है, परंतु वो भी जो कानून है, वो कानून का जो पेपर आएगा तब जाकर उस व्यक्ति का कोई परिचय जान पाएगा। यहां तक कि मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट होता है, पैदा होते समय बर्थ सर्टिफिकेट, फिर वो स्कूल में जाता है, कितने सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं उसको, फिर शादी करता है, मैरिज सर्टिफिकेट। और यदि उसको विवाह के पश्चात यदि तलाक भी देना है तो वो भी उसको कानून के अधीन ही जाकर लेना होगा। और फिर जितने सारे इस संसार में जीने के, उन सब में नियम लागू है। अब देखिए, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, परंतु देखा जाए तो कितने कानूनों के अधीन हैं हम। और इसलिए जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक हम कानून के नियमों के अधीन रहेंगे। अब आध्यात्मिक संसार में वहां पर कोई कानून क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं। Wherever there is material or wherever there is matter, there has to be laws. When there is a spirit, spirit means only love. Spiritual world full of love. Material world full of matter, full of laws. अब देखिए, हम एक relative example से समझने की कोशिश करेंगे। किसी के घर में कुछ एक नियम होते हैं, घर के नियम, परंतु वो घर के नियम बहुत स्ट्रिक्ट नियम नहीं होते, है कि नहीं। वही व्यक्ति घर से बाहर जाए तो जैसे ही रास्ते पे उतरता है, आता है, तो देखिए नियम चेंज हो जाते हैं, है ना। अब घर में वो एक टॉवल में घूम रहा होगा, तो कोई आके उसको बाहर से बोलेगा नहीं, क्या है? बोले भाई मेरा घर है, मैं टॉवल में घूमू, कुछ भी, बिना टॉवल में घूमू, कुछ भी करूं। अब वही यदि बाहर ऑफिस में जाता है टॉवल पहन के, मानो कि किसी कोई सरकारी नौकर है वो, तो मानो पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वहां पर नियम अलग है, उसको वर्दी पहन के वहां पर जाना है। तो घर में जो नियम है उसमें बंधन इतने कम क्यों हैं, या वो जो कानूनी तौर तरीके हैं वो घर में कम क्यों हैं? क्योंकि घर में प्रेम का आदान प्रदान ज्यादा है, है कि नहीं। सदस्य होना चाहिए, सपोज टू बी इन अ हाउस, लविंग रिलेशनशिप इज सपोज टू बी प्रेजेंट। तो क्योंकि घर में प्रेम प्रधानभूत है, इसलिए नियम जो हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। घर के बाहर जाओ, प्रेम नहीं प्रधानभूत, इसलिए इतने सारे नियम। एयरपोर्ट पे जाओ, हम अभी कितने सारे एयरपोर्ट पे गए, इतने सारे नियम कि सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ चेक होता है। अब आजकल इन एयरपोर्टों पे वो लोग पूरा ऐसे सब देखते हैं कि कहीं यहां पे तो कोई बम वम नहीं छिपाया हुआ। तो सुबह सुबह एक फ्लाइट पकड़ रहे थे और वो व्यक्ति सब कुछ यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ ऐसे दबा दबा के चेक कर रहा था। मैंने कहा फ्री में मसाज भी मिल रहा है। फिर वो मेटल डिटेक्टर और फिर वो स्कैनर और आप जो भी आप लाए हो, सब कुछ चेक होता है। इतने सारे नियम क्यों? क्योंकि उसको मुझसे कोई प्रेम नहीं, मुझे उससे कोई प्रेम नहीं है। तो प्रेम नहीं होने की वजह से विश्वास नहीं होता, है ना। तो इस भौतिक संसार में प्रेम की कमी है और प्रेम की कमी होने के कारण अविश्वास, और अविश्वास की वजह से नियम जरूरी है। जहां पर अविश्वास है वहां पर नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कोर्ट कचहरी इतने सारे कागजात लोग साइन करते हैं, सब कुछ ठीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं। अगला व्यक्ति जब तक पेपर पर साइन नहीं करेगा तब तक उसके मन में क्या चल रहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, है कि नहीं। अब घर में प्रेम प्रधानभूत है, इसलिए ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति होटल में जाके खाता है, तो होटल में जाके खाता है तो तुरंत वो वेटर को कहता है कि मेरे लिए ये फलाना आइटम लेकर आओ, तो वेटर लिख लेता है कि इसने ये आइटम ऑर्डर किया, और फिर उसका तुरंत वहां बिल बन जाता है, है ना। वो वेटर कोई प्रेम से नहीं खिला रहा उसे, हालांकि वो हंस हंस के मुस्कुराते हुए देता होगा, परंतु उसकी जो हंसी और उसकी जो मुस्कुराहट है वो किस लिए है? आपके जेब को देखते हुए कि उसमें से जो माल निकलेगा वो उसके जेब में जब जाएगा तब वो तथाकथित प्रेम पूरा होगा, वो फिर सर्किट कंप्लीट होगा। अब देखिए, वही व्यक्ति घर में वो अपनी पत्नी को कहता है या मां को कहता है कि मुझे आज ये खाना है, तो वहां पर कोई बिलिंग सेक्शन नहीं कि तुरंत अब किचन में वहां पर बिल बन रहा है इसका कि आज तुम्हारा नाश्ता था दो पराठे, चलो 50 रुपए। तो क्यों वहां पर, और इसलिए व्यक्ति जब होटल में जाता है तो थोड़ा सोच समझ के खाता रहता है, बार बार वो मेनू कार्ड को देखता रहता है कि इसका इसका रेट कितना है, और रोटियां मंगाता रहूंगा तो एक एक रोटी का रेट कितना है। लेकिन घर में ऐसा नहीं, लाओ लाए जाओ, ऐसा नहीं कि एक रोटी एक रुपया, अभी 10 रोटी खा ली 10 रुपया पहले निकालो, क्योंकि वहां पर विश्वास है। विश्वास क्यों है? क्योंकि प्रेम है। इसलिए आध्यात्मिक संसार जो कि जिसे हम कहेंगे प्रेम धाम, और भौतिक संसार जो कि केवल नियमों से बना हुआ, ये भौतिक संसार। तो एक भक्त को आध्यात्मिक संसार क्यों जाने की इच्छा है? ये भौतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में वहां पर कोई नियम नहीं है। अब देखिए, एक कोई तोता है गोलोक वृंदावन धाम में, तो तोता भी पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा कर पा रहा है जैसे कि कोई गोपी कर पाती है। इसलिए आध्यात्मिक संसार का नियम क्या है? एक ही नियम है, प्रेम। यदि ये कहें कि वहां का कानून क्या है, द लॉ ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लव। मानधी महाराज, उनके एक कोट्स का एक उनका आर्टिकल आया था, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उस आर्टिकल में कोट लिखा था, वेयर देर आर रूल्स देर इज नो लव, एंड वेयर देर इज लव देर आर नो रूल्स। तो अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का देव कार्य जो कि वृंदावन के बाहर, जो कि सब नियमों के द्वारा, कि भगवान किसका नियम पालन किए वृंदावन के बाहर, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु का नियम है। क्षीरोदक्षाय विष्णु का नियम क्या है? धर्म की स्थापना करना। ये सब वृंदावन में भगवान ने किसी को भगवद गीता नहीं सुनाई, किसी को ये सब कुछ नहीं कहा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, कर्म का ये नियम है, ये सब कुछ नहीं। तो भगवान का एक देव कार्य है, जब भगवान भी अवतरित होते हैं इस भौतिक संसार में तो कानून का पालन करते हैं देव कार्य को सिद्ध करने के लिए। अब उन देव कार्यों में जब भगवान के भक्त सम्मिलित हो जाते हैं तो भगवान देखिए किसे प्रधानता देते हैं, कानून को या प्रेम को? किसे प्रधानता देते हैं? प्रेम को। जैसे कि सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में भगवान कृष्ण और बलराम, और गुरु दक्षिणा में सांदीपनी मुनि ने क्या मांगा? उनका मृत पुत्र जो कि यमलोक पहुंच चुका था। तो अब कानून क्या है कि मरने के पश्चात वो पुनः उस शरीर में नहीं आ सकता, उसे दूसरा शरीर मिलना है, और यहां पर तो यमलोक, सांदीपनी मुनि इनके पुत्र कोई वहां पर यमलोक पहुंचाया गया था, और भगवान श्री कृष्ण क्योंकि सांदीपनी मुनि से इतना प्रेम करते थे तो प्रेम के कारण कानून को तोड़ा, अपने ही कानून को तोड़ा, और यमलोक जाकर सांदीपनी मुनि के पुत्र को लेकर आए कुरुक्षेत्र की रणभूमि। कितने सारे कानून थे युद्ध के, युद्ध के नियम कितने सारे थे कि ऐसे नहीं मारना, वैसे नहीं मारना, इस समय पे नहीं। और युधिष्ठिर महाराज जो कि कितने सारे कानून को पालन करते थे, और युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहते हैं कि बोलो अश्वत्थामा मर गया, और भगवान ने स्वयं उन्होंने वो नियम अपने ऊपर लागू किया था कि कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अपना ही नियम, अपना ही कानून भगवान ने तोड़ा. क्यों? क्योंकि अर्जुन से इतना प्रेम. श्रील प्रभुपाद वो वृंदावन में थे और रात के 2 बजे प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो सामने भगवान श्री कृष्ण की एक महाभारत की लीला का चित्र था. तो रात के 2 बजे प्रभुपाद अपने सर्वेंट को उठाए, वो सोए हुए थे, उनको उठाया, उनको बुलाया कमरे में और उनको वो चित्र दिखाया. रात के 2 बजे वो पूरा है उनकी, उनको समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी मंगल आरती कैसे हो रही है. आज मंगल आरती में क्या गुरुवाष्टक गाते हैं, यहां तो गुरु ही बुला लिए सीधा सीधा 2 बजे रात के. तो प्रभुपाद ने वो महाभारत की लीला का चित्र दिखाया और वो कौन सा चित्र था, भगवान रथ का पहिया हाथ में लिए भीष्म पितामह की ओर दौड़ रहे हैं और अर्जुन भगवान के पैरों को पकड़े. बहुत प्रसिद्ध वो चित्र है. तो प्रभुपाद ने अपने इन शिष्य को कहा, सो यू सी दैट फोटो? यस प्रभुपाद, आई हैव सीन दैट बिफोर ऑल्सो. प्रभुपाद कहते हैं, सो दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, गो स्लीप. क्या समझ में आया कि यदि भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है तो तैयार रहो, भगवान श्री कृष्ण नियम तोड़ भी सकते हैं और आपसे तुड़वा भी सकते हैं. तो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि भीष्म पितामह जो कि ऐसे खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न कि हां मारो मुझे मारो. हालांकि श्रील प्रभुपाद ये कह रहे थे उसमें विशेष रूप से, बाद में प्रभुपाद ने उसको विस्तारित कर कहा कि भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटाया, जो भीष्म पितामह के सबसे प्रिय संबंधी अर्जुन. तो भगवान श्रील प्रभुपाद ये कह रहे थे, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, इफ कृष्णा टेल्स टू किल योर ओन ग्रैंडफादर, यू हैव टू डू दैट. सो दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, इट्स नॉट अ केक वॉक. ये ऐसा नहीं कि हाँ सब कुछ एकदम चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा हियर एंड बी हैप्पी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और उसके बीच में जो कुछ हमें टेस्ट आएंगे, जैसे अर्जुन के सामने भगवान ने ये टेस्ट रखा, अर्जुन भगवान को देख रहे थे कि भगवान आप ये क्या आदेश दे रहे हो, भीष्म पितामह को मैं अपने हाथों से अपने बाणों से मार, भगवान कहे इतने बाण मारो कि एक उंगली की भी जगह नहीं होनी चाहिए. तो सिद्धांत क्या है कि कई बार गुरु और कृष्ण इनके आदेश ऐसे होंगे कि वज्र के समान हमें लगेंगे. वो श्रील प्रभुपाद ने कहा, दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, अदरवाइज यू कैन बिकम अ डिवोटी ऑफ एनी अदर डेमी गॉड वेरी इजी. तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने हेतु कितने कानून और नियमों को भगवान ने स्वयं तोड़ा. उसे भगवान ये दिखा रहे थे कि आध्यात्मिक संसार में भगवान से प्रेम यदि किसी को करना है या उसे जागृत करना है तो सारे नियमों के परे जाना होगा। तो अब प्रश्न ये है कि क्या नियमों की आवश्यकता नहीं है हमें? तो इतने सारे जो नियम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इतने सारे नियम हमको कहे जाते हैं पालन करने के लिए, इसका क्या मतलब है? कैसे समझें? चार नियम पालन करना है, जब करते समय 10 नाम अपराधों से बचना है, और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इतने सारे नियम दिए, मंदिर में कैसे प्रवेश करना, कैसे बैठना, कैसे अर्च विग्रह की पूजा, हरि भक्ति विलास में नियम के ऊपर नियम, कानून के ऊपर कानून। अपना इंडियन लॉ भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा जितने ये लॉज हमारे आचार्य दिए। तो क्या कैसे समझें, कौन कह सकता है? क्या आवश्यकता है जब हमें आध्यात्मिक संसार में जाना है जहां पर कोई नियम कोई कानून नहीं, तो फिर उसका प्रैक्टिस इधर करना चाहिए ना। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध्यासुर एतयोर एव किंकर। कि भगवान श्री कृष्ण को यदि हम 24 घंटा याद कर सकते हैं और एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता जब हम उनकी विस्मृति में हो, यदि उस स्तर को हम प्राप्त कर लिए तो बाकी सारे जो नियम हैं वो सब किंकर है। बाकी सारे नियम हमें उस स्तर तक लाने के लिए है। इसलिए जैसे वो प्रसिद्ध श्लोक है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोक रंजनम। बिना भक्ति के जो भी विधि का पालन हम कर रहे हैं, बिना भक्ति के जो भी विधानों का नियमों का कानूनों का पालन हम करें, बिना भक्ति के वो उसी प्रकार से है जैसे मृत शरीर को कोई सुसज्जित कर रहा है। बहुत कठोर उदाहरण है ये, मृत शरीर को सुसज्जित करना। और पाश्चात्य देश में इसे कहते हैं अंडरटेकर्स, वो लोग तो वो ये व्यवसाय है लोगों का, मृत शरीर को सुसज्जित करना, उसको सूट पहनाना, उसको पाउडर लगाना, सेंट लगाना, फिर लास्ट में स्माइल देना, ये सब कुछ उनका व्यवसाय है। परंतु व्यर्थ ये सब कुछ। उसी प्रकार से जैसे कि आजकल 21वीं सदी में ये उदाहरण ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, बिना सिम कार्ड के सेलफोन। तो आपके पास सेलफोन है मानो 40-50 हजार का, जिसके अंदर इतने सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं, लेकिन अंदर वो सिम कार्ड ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे सेलफोन का? तो वैसे ही हमारी भक्ति में हम इतना प्रचार कर रहे हैं, इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतने लोगों को 4-4 घंटा लेक्चर दिया, और बड़े बड़े मंदिर खोल लिए, और 24 घंटा लगे हुए, लेकिन अंदर भक्ति नहीं है, तो बिना सिम कार्ड का सेलफोन कोई फायदा नहीं उसका। तो इसलिए ये जानना आवश्यक है कि हमारे भक्ति के जो नियम हैं वो मुझे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है उसके प्रति जो प्रेम है वो जागृत करा रहे हैं कि नहीं, और उससे पहले क्या ये नियम मुझे भगवान से संबंधित जो कुछ है उसके प्रति प्रेम जागृत करा रहे हैं कि नहीं। कई बार हमें लगता है कि मेरा प्रेम भगवान के प्रति जागृत होना चाहिए, परंतु उससे पहले भगवान के भक्तों के प्रति क्या वो प्रेम जागृत हो रहा है कि नहीं। हां, हम किसी संस्था में भक्तों के साथ एक संस्था के रूप में जी रहे होंगे कि हम इस मंदिर में आते हैं क्यों, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हैं, हम दीक्षित भक्त हैं, हम काउंसिली हैं, हम काउंसलर हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम मंदिर के बगल में रहते हैं, जो भी कुछ। ये सब बाहरी हमारे मंदिर में आने के नियम हैं या वजह है, परंतु जब तक प्रेम नहीं भक्तों के बीच में, तो ये शारीरिक रूप से एक साथ आना ये किसके समान है? मृत देह को सुसज्जित करने के समान। हां, जैसे कोई सरकारी नौकर होता है, हाजिरी उसकी लग रही है, वो कुर्सी पे बैठा है कि नहीं वो मत पूछो, रजिस्टर में उसका हाजिरी लगा है। तो इसमें होगा क्या कि हां, हम केवल वो बाहरी रूप से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान तो कर लिए, परंतु यदि प्रेम उस भक्त के प्रति भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए नहीं है, तो वो केवल एक भौतिक स्तर पर हम मंडरा रहे। श्री प्रभुपाद के एक शिष्य हुए महात्मा प्रभु, उन्होंने बहुत से भजन और उनके एल्बम्स भी निकाले, महात्मा दास। तो इन्होंने श्री प्रभुपाद को एक बार एक पत्र में प्रश्न पूछा, इन्होंने पूछा कि मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलता हूं और मैं पूरे दिन लगा रहता हूं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में, और जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वापस मंदिर में आता हूं, तो लगता है कि मैं वापस जब मंदिर में आता हूं तो ज्यादा मैं विचलित रहता हूं, परंतु जब मैं सेवा में लगा रहता हूं तो विचलित इतना नहीं रहता, मानसिक स्थिति मेरी ठीक रहती। तो उनका प्रश्न था कि क्या जरूरी है, शुड वन सर्व कृष्ण एंड थिंक ऑफ कृष्ण लेस, और शुड वन थिंक ऑफ कृष्ण मोर एंड सर्व कृष्ण लेस? नहीं समझ में आया कि जब मैं भगवान की सेवा में लगा रहता हूं तो भगवान का स्मरण कम होता है, परंतु जब मैं मंदिर में आता हूं तो भगवान का स्मरण ज्यादा होता है लेकिन सेवा कम होती है, तो उससे मैं विचलित रहता हूं, सेवा कम हो रही है। तो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्विंग कृष्णा एंड थिंकिंग ऑफ हिम लेस, और थिंकिंग ऑफ हिम मोर एंड सर्विंग हिम लेस? तो प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा वेर एवर यू आर, whether you are in the temple or whether you are in a liquor bar. और फिर प्रभुपाद लिखे, to be fully absorbed in Krishna, you need three things. बहुत सुंदर प्रभुपाद का ये उत्तर इनको। सर्वप्रथम प्रभुपाद ने कहा, humility, नम्रता। One should have humility. और नम्रता क्या है? नम्रता यह है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं भगवान, यह नम्रता कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है अपने से मैं कुछ कर सकूं आपको प्रसन्न करने के लिए। तो ये इस प्रकार की नम्रता होनी चाहिए। फिर उसका नेक्स्ट स्टेज प्रभुपाद ने कहा, आफ्टर ह्यूमिलिटी देयर शुड बी अ प्रेयर, प्रार्थना ये होनी चाहिए कि भगवान मेरे अंदर शक्ति नहीं परंतु आपके कृपा से मैं कुछ कर पाऊंगा, सो यू प्लीज एम्पावर मी। तो प्रभुपाद ने कहा ये सेकेंड स्टेज है, टू बिकम फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा वेर एवर यू आर, एंड द थर्ड स्टेज इज नाउ यू डू व्हाट कृष्णा वांट्स एंड बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, पूर्ण प्रकार से भगवान पर निर्भर रहना कि भगवान आपके आदेश अनुसार मैंने किया, अब
हेल और हाई वाटर्स, जो भी कुछ हो मैं आप पे निर्भर हूं। बहुत ही सुंदर प्रभुपाद ने ये तीन मुद्दे कहे, नम्रता, प्रार्थना और पूर्ण निर्भरता भगवान के ऊपर। जब ये तीन चीजें, इसका हम पालन करेंगे तब हम कहीं पर भी रहें, चाहे हम किसी मदिरालय में रहें या मंदिर में रहें, हमारी जो चेतना है वो पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण में ही लगी रहेंगी। और फिर हम इस भौतिक संसार जो कि कानून से बाधित है, इस भौतिक संसार में हम प्रेम धाम में रह रहे हैं। चलो प्रभुपाद ने कहा, जैसे कि यूएस एम्बेसी है इंडिया में, तो यूएस एम्बेसी में आप जाओ तो आप मानो अमेरिका में रह रहे हो, उस प्रकार का माहौल है। ऑल्दो इट इज इन इंडिया बट द रूल्स आर ऑल ऑफ अमेरिका। एम्बेसी में आप प्रवेश करते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं अप्लाई होते वहां पर। तो प्रभुपाद ने कहा, जब हम इस चेतना में रहेंगे, ह्यूमिलिटी, प्रेयर एंड कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, देन although living in this material world which is governed by laws, we will be still governed by love of the spiritual world. एक हमारी यात्रा में दीन बंधु प्रभु वृंदावन के, उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था इस कथा में कि एक छोटा सा बालक वो रो रहा था और अपनी माँ को पुकार रहा था। उनकी माँ रसोई घर में वो कुछ बना रही थी, पका रही थी। तो जब अपने बच्चे को रोते हुए सुना तो माता बाहर आती हैं और उनके हाथ में कुकिंग करते समय उनके हाथ में गुड़ की एक डली थी। तो जैसे वो गुड़ की डली देखता है बच्चा तो बहुत लालायित हो जाता है, गुड़ की डली मांगता है, तो गुड़ की डली माता दे देती है। अब दूसरे दिन उसी समय वापस बच्चा रोता है तो मां बाहर नहीं आती, तो रो रो के फिर बच्चा अंदर जाता है और फिर मां को पूछता है कि कल मैं रोया और आप आए, आज नहीं आए। तो मां कहती है कि कल तुम मेरे लिए रो रहे थे, आज तुम गुड़ के लिए रो रहे हो। येस्टरडे यू आर क्राइंग फॉर मी बट टुडे यू आर क्राइंग फॉर द जैगरी। तो वैसे ही हमारी भी दशा ऐसी होती है कि शुरुआत में हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान जब आते हैं तो भगवान सामने भगवान की बहिरंगा शक्ति को भी लेके आते हैं, गुड़ को भी लेके आते हैं, और फिर हम भगवान के सामने गुड़ को, तो गुड़ मांग लेते हैं और फिर जब वापस रोते हैं तो भगवान जान लेते हैं कि बस अब इसको केवल गुड़ चाहिए, अब मैं नहीं। तो बहुत सुंदर ये कथा उन्होंने सुनाई। तो हमारे साधना भक्ति में भी जो नियम है वो है लॉज, और जो हम इसके द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं वो है लव। तो हर समय जब तक हमें भौतिक शरीर है, ये भौतिक मन है, ये द्वंद्व चलता रहेगा। द प्रिंसिपल ऑफ लव, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, दोनों आवश्यक है। हालांकि ये जो कानून है, जो नियम है, वो आवश्यक है ताकि हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम साधना भक्ति में जो कुछ करते हैं, चाहे हमारा जप हो, चाहे वो अर्च विग्रह की सेवा हो, प्रचार हो, भक्तों के साथ संग हो, जो कुछ हो, हमारा उद्देश्य हर समय यही बना रहना चाहिए कि मुझे इन सब के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करना है। और वो प्रेम जब प्राप्त होगा, जैसे भगवान यहां पर वृंदावन के बाहर गए, परंतु भगवान के विषय में कहा गया है वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि वास्तविक श्याम सुंदर भगवान कभी वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकते, वो तो वासुदेव कृष्ण बाहर गए, परंतु श्याम सुंदर कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी ने जो कहा कि वो व्यमोहित हो गए थे ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा। तो यदि हम भी ब्रजवासियों के पद चिन्ह पर चलते हुए उस प्रकार का प्रेम जागृत करेंगे तो भगवान भी कभी हमारे हृदय को नहीं छोड़कर जाएंगे। ये जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे मोर वन वृंदावन, कि मेरा मन वृंदावन है, तो उसी प्रकार से हमारे मन को हमें वृंदावन में परिणित करता है, करना है। और फिर ये श्लोक सिद्ध होगा, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान फिर कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न?
रू जी, जैसे कल एक जगह पे मैं पढ़ रहा था तो वहां पे बता रहे थे कि भगवान स्वराट है और भक्ति देवी भी स्वराट है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति स्वरामाला कर ही रहा है, चार नियमों का पालन कर रहा है, उसका मतलब भगवान बंदे है या भक्ति देवी बंदी की इसके हृदय में प्रकट होना है। लेकिन हम जो सब कुछ कर रहे हैं, हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं भगवान को और भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो फिर क्या संभावना है कि जैसे आचार्य कहते कि हम भगवान को कह नहीं सकते कि मैंने इतने साल तक इतना क्या आप मुझे दे दो, या भक्ति देवी को बोल नहीं सकते इतना इतना क्या आप हमें हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ, तो किस होप से या किस प्रकार से हम उसको देखें और फिर अपना जो कार्य या सेवा या साधना उसमें लगे रहे।
देखिए हाँ, भगवान स्वराट हैं, परंतु ये कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहे हैं ना कि मैं अपने भक्तों के पराधीन रहता हूं। कौन से भक्त? शुद्ध भक्त। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि भगवान को कैसे हम अपने पराधीन बनाएं, ये भक्ति करने का उद्देश्य नहीं है हमारा। हम पूरी त्रुटि से भरे, खामियों से हम भरे हुए हैं, हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, परंतु जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान उस शुद्ध भक्त के अधीन है। इसलिए जब हम ऑल्टर पर भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो हम किसे अर्पित कर रहे हैं? भगवान को नहीं अर्पित कर रहे। हम गुरु महाराज को अर्पित करते हैं, गुरु महाराज परम गुरु महाराज को अर्पित करते हैं, पूरी गुरु परंपरा को अर्पित होता है, अंततः श्रीमती राधा रानी के पास प्लेट पहुंचती है और फिर श्रीमती राधा रानी देखती हैं उसमें जो भी कमियां भी होंगी वो ठीक करके फिर भगवान को अर्पित करती है। तो डायरेक्टली हम अपनी भक्ति भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, वो हमारी भक्ति का प्लेट जाता है गुरु महाराज से, पूरी परंपरा और राधा रानी तक पहुंचता है और वो उसे शुद्ध करके अर्पित करती हैं। यही हमारा आश्वासन है, क्योंकि राधा रानी से पास होकर, गुरु परंपरा से पास होकर जाएगा तो ये हमारा होप्स है। खुद हम प्लेट लेके भागेंगे भगवान श्री कृष्ण के पास तो होपलेस, कोई होप नहीं। इसलिए तो हम हर समय राधाष्टमी के दिन ये कहा जाता है कि जब राधा रानी किसी को रिकमेंड करती है तो भगवान मना नहीं कर सकते। वैसे ही जो शुद्ध भक्त हैं राधा रानी के पद चिन्हों पर चलते हुए, जब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वो जब हमें रेकमेंड करते हैं तो वही हमारा होप है। हमारा होप्स है भक्तों का संग, और वो भक्तों का संग जिनके अधीन भगवान हो जाते हैं, उनके भक्ति के अधीन। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अब मैं, वो एक कैटेगरी आ जाएगा जब लोग मेरी शरण ग्रहण करेंगे और कि प्लेट मेरे पास भी आएगी बीच में एक बार। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का मैं भी मेंबर बनूंगा, वो सोचने मात्र से हम डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान स्वराट हैं तो सही बात है। और भक्ति जो है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है कि किसको भक्ति मिलेगी, कि हाँ ये सब कुछ ठीक है तो भगवान को देनी चाहिए भक्ति। नहीं, भगवान स्वराट है। परंतु जब प्रेम आ जाता है तो भगवान जो कि स्वराट है, वो कौन से, हम वही बोल रहे हैं ना कि ये एक विरोधाभास लगेगा कि प्रेम के नियम के अधीन हो जाते हैं भगवान। और वो प्रेम का नियम क्या है वो हम अभी नहीं समझ पाएंगे, जब हम शुद्ध होंगे तब उसका साक्षात्कार होगा। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसीएंस दिस लोगो,
प्लीज एक्सेप्ट माय।
इट्स क्लियरली अंडरस्टूड लव प्रायोरिटाइजेस रूल्स, बट देन वी आई एम अनेबल टू, इट्स अ लैक टू अंडरस्टैंड दैट इफ लव प्रायोरिटाइज द रूल्स व्हेन वी कम हियर, रूल्स प्रायोरिटाइज द लव, डू आई अंडरस्टैंड दैट रूल्स, इफ यू अटेन the proper discipline rules, it takes to the goal of love with Krishna?
Yeah, that's what we were speaking, that the rules which we follow in this organization, these rules, you know, it is like see, ISKCON is like a gun, and that love is the bullet inside the gun. Okay, so in this material world, people might say that I have love. It's like holding the bullet. What can you do? If you want to, you know, shoot someone, you can't throw that bullet. You need that gun. So the rules and regulations of the organization, that's like the gun which, you know, helps the bullet to go at that speed. So it's a tool, it's a medium. So therefore, we should not just get caught up with simply the rules and regulations and not understand the purpose behind the rules and regulations.
But then rules and love doesn't go hand in hand? It doesn't go parallel? Because, I'm interrupting in this between. If any intent comes, rules comes into his mind first rather than love. He feels to understand love towards Krishna, but then he follows rules strictly. Later on, after following the scriptures and listening to lectures, he might understand. But then, initially, can you much elaborate on that? If why can't the rules and love goes hand in hand parallelly?
No, they go hand in hand. See, in the neophyte stage, nausikya sthiti mein, hum niyamon ka palan प्रेम को प्राप्त करने के बाद, प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और जो व्यक्ति प्रेम को प्राप्त कर लेता है वो प्रेम से नियमों का पालन करता है। अभी जो हम नियमों का पालन कर रहे हैं प्रेम से नहीं, वो ऐसा करना है, लेकिन ये करने से हम प्रेम को प्राप्त होंगे। और प्रेम को एक बार जो प्राप्त हो जाता है वो स्वाभाविक रूप से नियमों का भी पालन करता है। सो यू आर राइट, you cannot separate the rules from love, but there is the way how you look rules, how you look at rules and how you look at love. From a pure devotee point of view, he follows rules out of love, and from a neophyte's point of view, he follows rule to get that love. So once he gets that love, then automatically he will follow the rules also. It goes without saying, you know, just like this question was asked to me in my one of the seminars, that is it necessary to take initiation to go back to Godhead? Diksha lena zaruri hai kya Bhagavad Dham jane ke liye? So in answer we said that you know, it's like a man and a woman, they are in love. So now, is it necessary that they should marry? What do you say? they are in love. Is it necessary that they should marry?
Yes, according to the constitution, yes, it is, yes.
Now, somebody who is already married, does it mean he has love? Not necessarily. Maybe someone can share. किसी की शादी हो गई ये जरूरी नहीं कि उसको प्रेम है अपने पार्टनर से, लेकिन किसी को प्रेम है तो क्यों नहीं वो विवाह करेगा, क्यों नहीं वो विवाह करेगा? इट्स ऑब्वियस. लेकिन अगर कोई बोलता नहीं मैं प्रेम करूंगा विवाह नहीं करूंगा, दैट इज ड्यूप्लिसिटी, दैट इज नॉट लव. सो somebody हु इज इन लव विथ कृष्णा विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ फोर्स. जैसे यहां पर हमको मंगल आरती आना पड़ता है, अटेंडेंस में अटेंडेंस लगाना पड़ता है. गोलोक वृंदावन में कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता है कि उधर गोपियां और मंजरियां भाग रही हैं सुबह 5 बजे. क्यों रजिस्टर, क्यों रजिस्टर, नहीं तो 108 बार लिखना पड़ेगा. तो यहां पे रूल्स रेगुलेशंस है ताकि हम धीरे धीरे उसको फॉलो करके हृदय शुद्ध हो. हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप वो प्रेम जो है वो करवाएगा सब कुछ, अपने आप वो प्रेम करवाएगा सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो. सो इट्स जस्ट हाउ यू सी फ्रॉम अ नियोफाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ प्योर डिवोटीज पॉइंट ऑफ व्यू. हरी बोल. एनी अदर क्वेश्चन? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.